पेशावर विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त वारदाता की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर एक, सभी संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है क्या? क्या विशेषता है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। और संगम युग की विशेषता क्या क्या है, या संगम युग को वरदान क्या क्या मिले हैं? उस दिन हमें चरती कला का युग है, विशेषता
दिव्य बुद्धि
और विशेष आत्मा बनने का युग, एक का पदम गुना प्राप्त होने का युग है, असंभव को संभव करने का युग है,
जो चाहे जब चाहे जितना चाहे भाग्य
जितना भाग्य बनाना चाहे उतना भाग्य बनाने का ये युग है,
सारे कल्प की प्राप्ति
करने का ये बैंक यहाँ खुलती है, अविनाशी बैंक यहाँ खुलती है।
अतीन्द्रिय सुख में सदा मौज में
अतीन्द्रिय सुख पाने का युग है, सदा मौज मनाने का युग है। तो संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है, और वो भी कैसा, एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही हो सकता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो भी मदद कितने समय तक मिलती रहती है, हिम्मत का एक कदम तो हजार मदद, हजार गुना मदद, बाप के हजार कदम, ये भी संगम युग की विशेषता है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है, सेवा से क्या होता है, तुरंत खुशी प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष फल। तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसीलिए कैसे हो, तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, बाबा कहते हैं शक्तिशाली हो, जो ताजा फ्रूट खाते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, कमजोर तो नहीं हो ना, सब पावरफुल हो, हेल्दी डाइट है, प्रत्यक्ष फल खुशी, कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है, सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो कमजोरी कमजोर कैसे होंगे, कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ सकती है, जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या, सभी अलर्ट है, सदा अलर्ट है। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती है वो कितना अलर्ट रहते हैं, रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है, तो अलबेलापन होगा या अलर्ट होगा, अलर्ट अर्थात सावधान, हमेशा अलबेलापन हो गया या अलर्ट होगा। तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे, बाप ने सर्वशक्तियां दे दी, जब सर्वशक्तियां साथ है तो अलबेलापन आ नहीं सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। तो क्या कह रहे हैं बाबा, संगम युग की विशेषता क्या है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना मिलता है, यहाँ पर पुण्य, एक पुण्य का पदम गुना और एक पाप का, वो भी दूसरी मशीनरी इधर है, ऑटोमेटिक चलने होगी, वहां पर भी 100 गुना, एक पुण्य का अगर है तो पाप का भी है, दोनों हिसाब है, ये ऑटोमेटिक मशीनरी चलती रहती है। बाबा ने कभी कहा है, जितने पाप तुमने ज्ञान में आकर किए उनको भस्म करने में जितना समय लगता है, उतना भक्ति काल में भी पाप नहीं किए, ये जो कि अज्ञान में एक का एक गुना, ज्ञान में एक का सौ गुना दंड है। इसके लिए ब्राह्मणों को जितना समय ज्ञान में आने के बाद किए हुए पाप कर्मों को दग्ध करने में लगता है, उतना अज्ञान में किए हुए को नहीं लगता है, इधर ज्यादा लगता है। क्योंकि यहाँ तो बाबा ने पाप की परिभाषा क्या क्या दे रखी है,
खतरा मोल दे दिया
ज्ञान में आकर बाप के अतिरिक्त और किसी को याद किया वो भी विकर्म ने, यहाँ तक बाबा ने परिभाषा दे दी विकर्म की पाप। तो संगम युग की विशेषता है कि प्रत्यक्ष फल मिलता है। ये प्रत्यक्ष फल कैसा है, ताजा फल है, फ्रेश फ्रूट। और जो ताजा फल खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बीमारी उनको हो नहीं सकती। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो कितनी खुशी मिलती है, एक की भी सेवा करते हो तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल संगम पर मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हो, इसीलिए शक्तिशाली हो, कमजोर तो नहीं हो ना, सब पावरफुल हो। कमजोरी को आने नहीं देना, जब तंदुरुस्त तो होते हैं तब कमजोरी स्वतः ही सब खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा तदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे, कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से भी आ सकती है, तो कब आती है फिर, जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाता है, जब विवेक सो जाता है। तीन नींद है, एक है स्थूल नींद जिसमें संसार की आत्मा है, सभी आत्माएं जिसमें सकते, दूसरी अज्ञान की नींद, और तीसरी एक है ब्राह्मणों की नींद, वो कौन सी, जिसमें ब्राह्मण सोते हैं, विस्मृति की नींद या अलबेलेपन की नींद या फिर बहानेबाजी की नींद, ये सब नींद। तो अलबेला, बेपरवाह, किससे बेपरवाह बनो,
यस।
कल का स्लोगन क्या था, जब संभ कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकते, नहीं तो नहीं आ सकते। आप तो अलर्ट हो, जागृत, सजग, जितनी हमारी सजगता है उतनी तो भी विकार नहीं आ सकती, परंतु जब सो जाते हो तो गलती से भी कमजोरी के लिए बाबा कहते हैं कमजोरी आ सकती। और एक बार रोग आ गया, कोई भी रोग अगर आता है तो रोग को एक चिंता होती है कि कहीं तुम औषधि ना खोज लो, इसके लिए वो अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। कोई भी रोग, बीमारी कोई भी होती है तो रोग अपने आप को सुरक्षित करता है। एक बॉडी में कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है, शारीरिक रोग होता है तो वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है रोग, उसे डर लगे, उसे डर रहता है कि कहीं तुम औषधि ना खोज लो, तुमको पता ना चल जाए, इसलिए वो अपने आप को गुप्त रखना चाहता है। तो आप तो अलर्ट हो, अलबेले हो क्या, सभी अलर्ट, सदा अलर्ट है। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जब बहुत कुछ मिल जाता है तो अलर्टनेस रहती है, जिसको बहुत प्राप्तियां होती है तो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है तो अलबेला होगा या अलर्ट। जिसकी बहुत कमाई हो रही है उसको नींद आएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है तो अलबेले कैसे होंगे। बाप ने सर्वशक्तियां दे दी, जब सर्वशक्तियां साथ है तो अलबेलापन आ नहीं सकता। सदा होशियार और सदा खबरदार, तो अलबेलापन कहो, आलस्य कहो, उसको छठा विकार कहा गया। क्या कारण है उसका, किस किस बात में अलबेलापन होता है ब्राह्मण, आलस्य किस में होता है, पुरुषार्थ में, उसके अंदर क्या, सबसे पहला तो अमृत वेला, एक
ज्ञान
चिंतन का आलस्य। मुरली क्लास तो ठीक है, ज्ञान चिंतन का आलस्य, मुरली है सामने परंतु उसको खाली पढ़ने की दिल है, उसके ऊपर चिंतन करने का हालत है। पढ़ तो सभी रहे हैं, कोई पांच पांच बार पढ़ते हैं, परंतु वहां रुक कर उसको क्या कहा है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसकी गहराई है, वो नहीं करना चाहते। उसमें आ जाते
हैं
पचाने तो वो क्या है, वो क्या कह रहा है। आज की पूरी मुरली तो बाबा ने भाषण पर ही चलाई है। भाषण कैसे देना है, यथार्थ हो तुम्हारा भाषण, स्पष्ट हो तुम्हारा भाषण, सत्यता हो, नम्रता हो, मधुरता हो, महानता हो, प्राप्ति कराने वाला हो, पहले ही उसमें स्नेह स्वरूप का हो, पहले से ही ऐसे नहीं कि स्टेज पर बैठो और फिर वहां पॉइंट्स के बारे में सोचते रहो। तुमको तो स्नेह में समा जाना है स्टेज में, जितना तुम स्नेह में समाए होंगे उतना स्नेह से आत्माओं को घायल करोगे, पत्थर को भी पानी कर सकते हो। तो ये इसी पर सारा बोला है आज तक तो। और किसमें आलस्य किस किस में है? एक तो सबसे पहले अमृत वेला, दूसरा मुरली, रचनात्मक सोच,
योग में नए प्रयोग करने।
हाँ, योग में वही योग कर रहे हैं और उसमें नए नए प्रयोग, नई नई चीजों के बारे में सोचना, नए नए समान निर्माण करना, नए एक ही समान है, पुराना ही समान पर उसको एक नई दृष्टि से सोचना, उसका नई दृष्टि से प्रयोग करना, एक नए आयाम ढूंढना ज्ञान में, योग में, समान में, पुरुषार्थ में, सेवाओं में। सेवाओं के लिए तो बाबा कहते हैं, वो तो करते हैं सभी, परंतु फिर भी नवीनता चाहिए बाबा। तो और किसमें आलस्य है? मनसा सेवा में, मनसा सेवा करना आलस्य होता है।
मर्यादा नियम संयम
उसमें आलस्य, मर्यादा तो पालन करते हैं सभी। और
जागने मन से,
कब जागने में?
सोने में ठीक, जागने मन से।
रात को चार्ट में,
हाँ चार्ट, रात में सोने की विधि क्या है, याद करके सो रहे हैं, कुछ पढ़ के सो रहे हैं, या फोन पर बात करते करते सो रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। कौन सी विधि से सो रहा है, क्योंकि जो संकल्प के साथ आत्मा सोएगी उसी संकल्प में के साथ वो उठती है। जो सोचते सोचते सोएगा वही सोचते सोचते हम उठते हैं। तो हमारा सबसे बेस्ट योग का समय कौन सा है? सबसे बेस्ट समय है सोते, जब बिस्तर पर लेटे हुए हैं वो, क्योंकि वहीं पर अवचेतन मन जागृत होता है, वहीं पर सबकॉन्शियस माइंड वहीं पर जागृत होता है। वो जो कुछ सोचते हुए वहां सोओगे वो सीधा अंदर चला जाता है। अमृत वेला तो है ही, नमा शाम तो है ही, और भी एक समय है सोते समय, जब बिस्तर पर लेटे हुए उस समय।
तो हमेशा सो के करना चाहिए
अगर करो तो बहुत अच्छा, परंतु वो योग हो, फिर उसमें आलस्य आने की संभावना है, अलबेलापन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर लक्ष्य आपका योग नहीं है, फिर लक्ष्य सोना हो गया, उल्टा हो गया फिर वहां पर। आपने योग को फिर आप तीन सोने, सोना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वहां पर, योग सेकंड नंबर पे आ गया। योग का तो समय है ही अमृत वेला, योग का तो समय है ही नुमाशाम का, ये हम एडिशन कर रहे हैं कुछ तो, जिससे कि वो दोनों और शक्तिशाली हो जाए और जो संस्कार अंदर बैठे हैं वो खत्म हो जाए। तो जब सर्व शक्तियां साथ है तो अलविदापन आ नहीं सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रखो, अटेंशन और चेकिंग के दो पहरेदार रखो बाबा कहते हैं, तो तुम्हारा खजाना कभी कोई लूटेगा नहीं, कोई चोर नहीं ले जाएगा। सदा अटेंशन, सदा जागृत अवस्था, होश में कभी भी हमसे गलती नहीं होती है। जब भी हमसे गलती होती है समझ लेना वो मूर्छा की अवस्था है, जिसमें हम थोड़े से मूर्छा में है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है,
प्रेजेंट माइंडेड,
जो कर रहे हैं वही करना है बस। अमूर्छा की अवस्था में कभी कोई गलती नहीं होती, मूर्छा में गलतियां होती, मूर्छा में ही हम गिरते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, ये हमसे कुछ गलती है। मूर्छा अर्थात ही देहाभिमान, अमूर्छा अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति में गलतियां होने की संभावना बहुत ही कम है या ना है, तो सदा होशियार और सदा खबरदार। क्यों खबरदार रहना है? क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ही चालाक है, उसे हमारी हर बात का पता है, हर कमजोरी को वो जानता है, पता नहीं कहां से वार कर देता है और कैसे करता है और कब करता है।
उसका अटेंशन
जितना उसका अटेंशन हमारे पर है, हमारा उतना उसके ऊपर नहीं है। जब हम आराम से सो जाते हैं, हमको लगता है अभी बहुत ही सुरक्षा है सब जगह, अचानक वो कहां से आ जाता है पता नहीं और हम पर आक्रमण करता है। वो आक्रमण उसी समय करता है जब हम अचेत है, जब हम सचेत है तब कभी आक्रमण नहीं कर सकता। इसके लिए योद्धा लोग दिखाते ना अपनी तलवार हमेशा साथ में ही रखते हैं। कोई आया थोड़ा सा हलचल भी हुआ कि पहला हाथ अपनी तलवार की तरफ जाता है। अगर कोई सिपाही सो रहा है अपने तंबू में, उसको थोड़ी सी भी हलचल हुई तो सबसे पहला हाथ अपनी तलवार की ओर जाता है। कौन है वो, है या नहीं है वो बात की बात है। हाथ पहले उधर जाता है क्योंकि मित्र भी शत्रु हो सकता है वहां पर। तो हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से है? हमारी तलवार। थोड़ा सा भी हलचल पदचाप सुनाई दिए कि पहला हाथ ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। कौन है? तो सदा होशियार, सदा अलर्ट, सदा चौकन्ना, सदा सजग, सदा सचेत, सदा अमूर्छा की अवस्था, सदा जागृत, सदा होश। होश में रहना ही योग है। दिन में कभी सो ना जाना, बस ये योग है। फिर बाबा यूके से मिल रहे हैं। यूके को क्या कहते हैं बाप दादा?
ओके
ओके। यूके को तो बाप दादा कहते ही है। ओके ओके अर्थात
बाप भरोसा।
ओके ओ बाबा का किंगडम। ओ बाप और वर्षा। ओ अर्थात बिंदु, के अर्थात किंगडम, किंगडम अर्थात राज्य, राजधानी। तो जो ओके होगा, ओके अर्थात वैसे क्या, ओके मतलब सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब अच्छा, ऑल इज वेल, सब ठीक है। ओके अर्थात ये सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब बराबर चल रहा है। तो जो ओके होगा मतलब बिल्कुल ठीक,
ये के होना चाहिए था
क्या?
ऑल
करेक्ट। चलो वो भी है, कोई कंप्लेन नहीं। आज बाबा ने कहा टीचर्स को मिलन मधुर मिलन जो है अर्थात नो कंप्लेन। हाँ
ऐसी हो जाएगा,
एक के लिए क्या बोल रहे हो? ऑल करेक्ट। अच्छा एसी, वो तो जो बनाना है बनाओ, हमारा ही है। तो जो ओके होगा वह जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियां निकली है वह भी शक्तिशाली है। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला। ओके अर्थात बाबा ने कभी और परिभाषा दी है ओके की। किसी ने बाबा ने कभी पूछा था सब ठीक है, तो किसी ने कहा ठीक है सब ओके है, तो बाबा ने कहा अच्छा ओके। पर ओके का अर्थ जानते हो? ओके अर्थात बाप समान। बाप समान हो तो पीछे हट गए, फिर सोचना पड़ेगा अभी ठीक है नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा का विशेष लाडला है। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी हाथ में हो। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही, ऐसा ही लगता है ना, या मेहनत लगती है। नाचते गाते फल खाते रहते हो, खा भी रहे फल, ताजा फल, और वो भी कैसे, नाचते हुए गाते हुए। वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है, उनको ये आपके जो मसाले और तेल ज्यादा पसंद नहीं है, उनको फ्रूट्स पसंद है, सलाड्स पसंद है, उबला हुआ ज्यादा पसंद है। बाप दादा भी यूके अर्थात सदा होके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। ऐसे बच्चों को देखो बाप दादा हर्षित। इसके लिए बाबा कहते हैं सेवा समाज को कैसे भेजो, चार चार पेज का मत भेजो अभी, बस ओके, बस एक ही वर्ड लिखो ओके, बस कैसे हो ओके, बाबा के पास टाइम नहीं है,
पढ़ पढ़ के
थक गए कंप्लेन लिखने। तो बाप दादा हर्षित होते हैं जब सदा ओके रहने वाले बच्चों को देखते। अपना यह टाइटल सदा याद रखना, कौन सा टाइटल? ओके टाइटल, यूके वाले को। ये कितना बढ़िया टाइटल है, सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले हो। चेहरे से, वृत्ति से, वाणी से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहां से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो, सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? पूछ रहे हो सभा में, पूछ रहे सबसे ज्यादा खुश कौन है? ओके वाले। क्या उत्तर है? सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? बाबा कहते रहे नशे से कहो मैं है कोई दुनिया में ढूंढ लो जिसके पास हमसे ज्यादा खुशी है, कोई हो ही नहीं सकता। हम ही दुनिया में सबसे नंबर वन खुश, मैं हम सिवाय खुशी के और है ही क्या? क्या बहुत माल है, कहां से आया वो पता नहीं। खुशी ब्राह्मण जीवन की क्या है? खुराक है, श्वास है, और क्या है? प्राण है, शोभा है, रौनक है, श्रृंगार है, विशेषता है, दिव्यता है, खजाना है, कुंजी है, ड्यूटी, अधिकार है। तो खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो ना, तो खुराक है तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो पहले तीन पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना, थोड़ी सी जमीन लेना मुश्किल था। तो लंदन ने कमाल की है ना, सभी यूके वाले लकी है और अंगुली देने में बहादुर। तो बाबा ने यहाँ दो बातें कही है, एक तो सदा होशियार, सदा खबरदार रहना है, और संगम युग पर क्या प्राप्तियां हुई है उसका नशा। संगम युग की विशेषता क्या है? ताजा फ्रूट खाते रहना, वो है प्रत्यक्ष फल, वो है खुशी। तो तंदुरुस्त रहेंगे, तो शक्तिशाली रहेंगे, तो माया नहीं आ सकती। पर यदि कुंभकर्ण की नींद में सो गए तो माया आ सकती है। इसके लिए सदा अलर्ट, सदा होशियार। और दूसरा यूके से बाबा मिल रहे हैं, उनको कहा कि सदा ओके रहने वाले। जो ओके रहने वाले उनको देखकर बाप दादा सदैव हर्षित होते। तो बाबा हमसे पूछे कैसे हो, बीच में दिन में एक बार अचानक आके पूछ ले बाबा 12 बजे
हमसे पूछ रहे हो
कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा हालचाल क्या है, तो क्या कहो? किससे पूछ रहे हो? कुछ होश में तो हो? हमसे ज्यादा कुछ दुनिया में कोई है? पहले सोच तो लेना था किससे पूछ रहे हो। और बाबा अगर बीच में आ जाए 12 बजे दिन में पूछने, चिमन भाई सब ठीक है? बीच में आ जाए 2 बजे, बीच में आ जाए 4 बजे, अभी अभी किसी ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और हमें भी उसे डांटने ही वाले, और उस समय बीच में ही बाबा आ जाए, ठीक है? तो क्या कहोगे?
अब ठीक हो गया बाबा आने से
ठीक हो गया। अभी कुछ हमारे अंदर का क्रोध अभी विस्फोट होने ही वाला था, तब उसी समय बाबा की पधरावनी हो गई। पूछ रहे बाबा ओके है तो
ठीक है
बाबा थोड़े देर के बाद आओ, पहले ये काम कर लूं महत्वपूर्ण फिर आ जाना। रॉन्ग एंट्री की है आपने इस समय ये कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये टाइम लेके आ जाओ, विदाउट प्रोग्राम कैसे आ गए आप तो बाबा कहते जो ओके रहने वाले हैं वो उनको देखकर बाप दादा खुश है। जो खुश रहने वाले हैं बाप दादा की आंखों के सामने घूमते रहते हैं। तो खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हैं ना, तो खुशी है तब तो चल रहे हैं ना, तो सदा खुश रहें। अच्छा।